नमस्कार। आज हम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य के एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्बोधन पर गहराई से बात कर रहे हैं। विषय है भारतीय संस्कृति का मूल गायत्री महामंत्र। तो सवाल यह है कि आखिर इस मंत्र को भारतीय संस्कृति की जड़ क्यों माना जाता है, इसका क्या अर्थ है हमारे लिए?
जी, पूज्य गुरुदेव इसे एक बड़े ही आप कह सकते हैं भावनात्मक रूपक से समझाते हैं। वो कहते हैं जैसे हमारी एक जन्म देने वाली माँ होती है जो शरीर पालती है,
हाँ,
वैसे ही एक और माँ है गायत्री जो आत्मा का पोषण करती है।
अच्छा,
इसे तो स्वर्ग की कामधेनु तक कहा गया है, जैसे उसका अमृत पीकर देवता दिव्य बनते हैं।
तो ये सिर्फ एक मंत्र नहीं हुआ फिर?
बिल्कुल नहीं। गुरुदेव के अनुसार ये तो ऋतम भरा प्रज्ञा है, मतलब सत्य को धारण करने वाली बुद्धि, सही गलत में फर्क करने वाली विवेकशीलता।
अच्छा, ऋतम भरा प्रज्ञा।
जी, और इसे ही भारतीय संस्कृति की आत्मा कहा जा सकता है। उन्होंने ये भी समझाया कि जैसे एक छोटे से बीज में है ना पूरा विशाल पेड़ छिपा होता है,
हाँ हाँ,
वैसे ही इस मंत्र में सृष्टि का सारा दिव्य ज्ञान विज्ञान वो बीज रूप में मौजूद है।
ये तो अद्भुत बात है। और इसकी उत्पत्ति के बारे में क्या बताते हैं गुरुदेव?
हाँ, वो बताते हैं कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि रचने लगे तो उन्हें ज्ञान विज्ञान चाहिए था,
जाहिर है,
तो उसके लिए उन्होंने गायत्री की ही तपस्या की थी।
अच्छा,
और सबसे दिलचस्प बात जो इसे और भी मौलिक बनाती है वो ये है कि इसी गायत्री मंत्र को चार हिस्सों में बांटकर चार वेद रचे गए।
क्या बात है, कैसे?
देखिए, ओम भूर्भुवः स्वः से बना ऋग्वेद।
अच्छा।
तत्सवितुर्वरेण्यम से यजुर्वेद।
अच्छा।
भर्गो देवस्य धीमहि से सामवेद और धियो योना प्रचोदयात से अथर्ववेद।
ओह, मतलब वेद जो हमारी संस्कृति और धर्म की एकदम नींव है।
जी हाँ, वो इसी वेद माता गायत्री से उत्पन्न हुए हैं।
तो क्या ये कहा जा सकता है कि वेदों का असल मर्म समझने के लिए गायत्री को समझना जरूरी है?
गुरुदेव के दृष्टिकोण से तो यही लगता है। और देखिए ना, हिंदू धर्म में इसके प्रतीक भी हमारे जीवन में कैसे रचे बसे हैं।
जैसे?
जैसे मस्तिष्क पर शिखा रखना और कंधे पर यज्ञोपवीत मतलब जनेऊ पहनना।
हाँ, जनेऊ।
ये दोनों गायत्री के ही प्रतीक माने गए हैं। जनेऊ के जो तीन धागे हैं वो गायत्री की तीन व्याहरत्या हैं, भू भुवः स्वाहा।
अच्छा।
और उसमें जो नौ सूत्र होते हैं वो इसके नौ शब्दों को दर्शाते हैं। ये मर्यादा और हमारे सामाजिक कर्तव्यों की याद दिलाते हैं। और पुराने जमाने में गुरु सबसे पहले शिष्य को यही मंत्र सिखाते थे, इसीलिए इसे गुरु मंत्र भी कहा गया।
इतना गहरा प्रतीकवाद, इतना केंद्रीय महत्व, फिर भी गुरुदेव बताते हैं कि एक समय ऐसा आया, एक अंधकार युग, जब हम इसे भूलने लगे।
बिल्कुल, और इसे भूलना नहीं था। गुरुदेव ने साफ बताया कि कैसे इसे जानबूझकर सीमित कर दिया गया।
सीमित मतलब?
मतलब ये कहा गया कि इसका अधिकार बस एक खास वर्ग को है, बाकी लोग नहीं कर सकते। फिर कहा गया कि स्त्रियों को अधिकार नहीं।
अरे,
और हद तो तब हुई जब ऐसी भ्रामक बातें फैलाई गईं कि ब्रह्मा जी का, वशिष्ठ का, विश्वामित्र का शाप है इस पर, या ये मंत्र कीलित है, मतलब इसे निष्क्रिय कर दिया गया है।
लेकिन ये ऋषि तो खुद इसके उपासक थे।
वही तो, वो तो इसके महान ज्ञाता और साधक थे।
हाँ।
फिर ये बात कही गई कि इसे गुप्त रखो। अरे भाई, अच्छी बातें तो खुलकर बताई जाती है ना।
सही बात है।
तो गुरुदेव के अनुसार इस तरह से हमारी संस्कृति की जड़ों को ही मतलब छिन्न भिन्न कर दिया गया।
लेकिन अब वो अंधकार धीरे धीरे छंट रहा है।
गुरुदेव ने महात्मा गांधी का उदाहरण भी दिया था।
हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है।
गांधी जी ने दिल्ली की जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में गायत्री को विश्व मानव का मंत्र कहा था।
विश्व मानव का मंत्र?
हाँ, मतलब इंसान के अंदर जो मानवता सोई है उसे जगारे वाला मंत्र। ये दिखाता है कि गायत्री सिर्फ हिंदुओं का मंत्र नहीं है, ये तो ऋतंबरा प्रज्ञा, वो विवेकशीलता है जो हर इंसान के लिए है।
तो ये एक तरह से पुनर्जागरण है।
जी, गुरुदेव इसे बिल्कुल ऐसा ही मानते थे जैसे खोई हुई मणि वापस मिल जाए, जिससे भारतीय संस्कृति अपनी शक्ति फिर पा सके।
गुरुदेव के विश्लेषण में एक और बात मुझे बहुत प्रभावित करती है। वो गायत्री के दो पक्षों पर जोर देते हैं, एक तत्व ज्ञान,
हाँ, फिलॉसफी या ब्रह्म विद्या,
और दूसरा विज्ञान मतलब प्रैक्टिस, जिसे सावित्री साधना भी कहा गया।
जी हाँ, और उनका ये आग्रह था कि ये दोनों अलग नहीं है, ये अविभाज्य है।
अच्छा।
तत्व ज्ञान है जीवन जीने की सही दृष्टि, सही सोच, मानवीय मूल्य, और विज्ञान है इसका अभ्यास, जप, ध्यान, अनुष्ठान, इनसे अंदर की शक्तियां जागती हैं।
तो दोनों जरूरी हैं।
अनिवार्य हैं। गुरुदेव ने साफ कहा कि सिर्फ एक पक्ष अधूरा है। जैसे मान लीजिए आपको शरीर रचना पता नहीं और आप ऑपरेशन करने लगे, कितना खतरनाक है।
हाँ बिल्कुल।
या फिर अच्छी से अच्छी दवा हो लेकिन आप परहेज न करें तो बेकार है। तो जीवन में सफलता के लिए ज्ञान और कर्म दोनों का संतुलन चाहिए ही चाहिए।
यहाँ गुरुदेव एक बहुत जरूरी सवाल भी उठाते हैं। वो कहते हैं कि मान लीजिए साधना से शक्ति मिल भी गई तो उसका उपयोग कहाँ करेंगे।
हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।
वे कहते हैं कि उपासना तभी फल देती है जब साधक में पात्रता हो।
और पात्रता का मतलब क्या है?
गुरुदेव के अनुसार पात्रता यानी परिपक्वता, मैच्योरिटी, जिम्मेदारी का एहसास।
और ये पात्रता कैसे आती है?
इसके लिए गुरुदेव दो गुणों को आधार मानते हैं। पहला, चरित्रवान होना, जिसे वो ब्राह्मण जीवन कहते हैं, मतलब सादा जीवन, ऊंचे विचार, किफायत,
सादगी और उच्च विचार
जी। और दूसरा, उदार और संवेदनशील होना, जिसे वो संत जीवन कहते हैं, मतलब करुणा, सेवा, दूसरों का भला सोचना। यही अध्यात्म की असली नींव है। इसके बिना साधना अधूरी है।
तो पहले खुद को उस लायक बनाना होगा।
बिल्कुल। और गुरुदेव ने अपने अनुभव से इसके तीन पक्के लाभ बताए हैं।
क्या लाभ?
पहला, आत्मसंतोष, मतलब मन की शांति। दूसरा, जन सहयोग, समाज का साथ मिलना। और तीसरा, ईश्वरीय अनुग्रह, यानी भगवान की मदद। और उनका अपना जीवन तो इसका प्रमाण ही था।
निश्चित रूप से।
तो अगर हम सार निकालें तो पूज्य गुरुदेव के अनुसार गायत्री मंत्र सिर्फ कोई जाप या कर्मकांड नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
ये तो भारतीय संस्कृति का मूल तत्व है। जीवन जीने की एक पूरी पद्धति है, जिसमें सही समझ यानी तत्व ज्ञान
और सही कर्म यानी विज्ञान,
हाँ, दोनों शामिल हैं
जी।
और उनका पूरा जीवन ही इसी दर्शन और विज्ञान को समझाने और लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने में लगा रहा, ताकि व्यक्ति और समाज दोनों का सही मायने में उत्थान हो सके।
तो आज की इस चर्चा के बाद मुझे लगता है सोचने का विषय हम सबके लिए कि हम अपने जीवन में इस प्राचीन ज्ञान के, तत्व ज्ञान और विज्ञान, मतलब इसकी गहरी समझ और इसके अभ्यास,
हाँ, उसमें संतुलन कैसे लाएं।
बिल्कुल, संतुलन कैसे बनाएं ताकि सही अर्थों में अपना भी और इस समाज का भी भला कर सके।
हाँ।
ये एक विचारणीय प्रश्न।